एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद प्रतिभाशाली लेकिन उतनी ही जटिल शख्सियत सिल्विया प्लैथ की, और हम उनकी जिंदगी और काम को समझने की कोशिश करेंगे लिंडा वैगनर मार्टिन की लिखी जीवनी के जरिए। ये किताब 1987 में आई थी।
हाँ, सिल्विया प्लैथ 1932 में जन्म, 1963 में मौत। महज 30 साल की जिंदगी। वो एक अमेरिकी कवयित्री थीं, उपन्यासकार, कहानीकार, जिनकी आवाज में एक अलग ही बिजली थी।
हाँ, और इतनी कम उम्र में दुनिया छोड़ गई, लेकिन उनका असर वो आज भी महसूस होता है। 20वीं सदी की शायद सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक।
बिल्कुल, उनका उपन्यास द बेल जार या उनकी कविताएं आज भी लोग पढ़ते हैं, उनसे जुड़ते हैं, शायद कहीं ना कहीं हिल जाते हैं।
उनकी कहानी भी तो किसी उपन्यास से कम नहीं लगती। एक तरफ वो कमाल की प्रतिभा, सफलता, और दूसरी तरफ वो मानसिक बीमारी से जूझना, रिश्तों में तनाव और वो दुखद अंत।
सही, और इसी वजह से शायद वो एक कल्चरल आइकॉन जैसी बन गई।
और आप कह रही थी कि ये जीवनी वैगनर मार्टिन की किताब इसलिए भी अहम है क्योंकि ये शायद पहली थी जो परिवार के कंट्रोल के बिना लिखी गई।
हाँ, यही इसकी खास बात है। उस समय तक सिल्विया प्लैथ की जो इमेज थी वो काफी हद तक उनके पति, जो खुद भी बहुत मशहूर कवि थे, टेड ह्यूज, उनके द्वारा कंट्रोल की जा रही थी। तो ये पहली गंभीर एकेडमिक कोशिश थी जो उस कंट्रोल से बाहर थी।
अच्छा,
वैगनर मार्टिन कोशिश करती हैं कि प्लैथ को सिर्फ एक विक्टिम की तरह न देखा जाए, सिर्फ उनकी पीड़ा के चश्मे से नहीं, बल्कि उन्हें एक जटिल, महत्वाकांक्षी, पावरफुल, प्रोफेशनल महिला के तौर पर समझा जाए, एक सजग कलाकार जिसने अपने अनुभवों को, अपने दर्द को भी लिटरेचर में बदला, कालजयी लिटरेचर में।
तो चलिए इस सफर पर चलते हैं, उनकी शुरुआत से, बचपन, घर का माहौल, उसने कैसे उन्हें शक्ल दी।
उनका जन्म तो बोस्टन, मैसाचुसेट्स में हुआ था। पिता ओटो प्लैथ, वो जर्मनी से आए थे, बोस्टन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान पढ़ाते थे, और काफी सख्त मिजाज के माने जाते थे।
और माँ?
माँ ऑरेलिया शोबर प्लैथ, वो ऑस्ट्रेलियाई मूल की थी, काफी महत्वाकांक्षी थी, खासकर बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत समर्पित थी।
और फिर वो हादसा हुआ, 8 साल की उम्र में पिता की मौत। ये बहुत बड़ा मोड़ था।
हाँ बिल्कुल, उनके पिता की डायबिटीज से मौत हुई जिसका सही समय पर इलाज नहीं हो पाया। वैगनर मार्टिन इसे प्लैथ की जिंदगी का फाउंडेशनल ट्रॉमा कहती हैं, मतलब एक बुनियादी सदमा।
बुनियादी
क्यों? क्योंकि इसने बहुत छोटी उम्र में उनके मन पर एक गहरी छाप छोड़ दी। एक तरफ पिता की एक आदर्श छवि थी मन में, और दूसरी तरफ उनके जाने से वो अकेलापन, वो त्याग दिए जाने का एहसास, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये उनकी सोच और उनके लेखन में बार बार लौट कर आता है, खासकर पिता पर जो कविताएं हैं उनमें।
पिता के जाने के बाद माँ ने ही पाला पूसा, जाहिर है बहुत मजबूत रही होंगी।
हाँ, ऑरेलिया बहुत दृढ़ थीं, बच्चों के लिए सब कुछ किया, लेकिन शायद इसी माहौल का एक नतीजा ये भी हुआ कि सिल्विया के अंदर वो परफेक्शनिज्म, हर चीज बिल्कुल सही करने की धुन और दूसरों को खुश रखने की जबरदस्त इच्छा पैदा हुई।
अच्छा, मतलब उन्हें लगता था कि उन्हें सफल होकर माँ के त्याग को सही साबित करना है।
हाँ, कुछ ऐसा ही, और लिखने की तरफ झुकाव भी बहुत जल्दी हो गया। परिवार वेलेस्ली चला गया था और वहां उनकी पढ़ने लिखने की महत्वाकांक्षाएं और बढ़ीं। उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि लिखकर पहचान मिल सकती है, स्वीकृति मिल सकती है।
8 साल की उम्र में पहली कविता छपी थी, है ना?
हाँ, महज 8 साल की उम्र में। तो ये पैटर्न बन गया, अपनी काबिलियत से दुनिया में जगह बनाना।
फिर कॉलेज का दौर आया, स्मिथ कॉलेज।
स्कॉलरशिप पर, पढ़ाई में तो हमेशा ही अव्वल थी।
हाँ, बहुत होशियार थी, लोकप्रिय भी थी, मतलब बाहर से देखो तो सब परफेक्ट था।
हाँ, लेकिन वैगनर मार्टिन इसी बाहरी चमक के पीछे का जो मनोवैज्ञानिक दबाव था उसे हाईलाइट करती हैं।
वो हर समय बेस्ट रहने का प्रेशर।
बिल्कुल, वो प्रेशर उन्हें अंदर से खाए जा रहा था, तो वो एक तरह का दोहरापन था। बाहर एकदम सफल, अंदर लगातार संघर्ष, ये उनकी पहचान का एक हिस्सा सा बन गया।
और ये तनाव शायद फूटा 1953 की गर्मियों में, जब वो न्यूयॉर्क गई थी मैडमोइसल मैगजीन की गेस्ट एडिटरशिप के लिए।
सही, वो बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, पर न्यूयॉर्क का अनुभव, वो जैसा सोचा था वैसा नहीं निकला। शायद साहित्यिक दुनिया की असलियत देखी या अपनी पहचान को लेकर कन्फ्यूजन बढ़ा, जो भी हुआ वो मोहभंग काफी गहरा था।
और फिर वेलेस्ली लौटने पर वो डिप्रेशन।
हाँ, बहुत गंभीर डिप्रेशन, ये वही दौर है जिसे उन्होंने बाद में अपने नॉवेल द बेल जार में लिखा। अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, ECT यानी इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी हुई, जिसका अनुभव बहुत बुरा रहा उनके लिए।
और उसी दौरान वो आत्महत्या की कोशिश भी हुई थी।
हाँ, नींद की गोलियां ले ली थी। 3 दिन बाद उन्हें ढूंढा गया, बचाया गया। ये एक बहुत ही भयानक मोड़ था। इसने उनकी वो परफेक्ट गर्ल वाली इमेज तोड़ दी। उन्हें अपने अंदर के अंधेरे से सीधे सीधे सामना करना पड़ा।
लेकिन कमाल ये है कि वो इस सब से उभर कर वापस भी लौटी। ये उनकी इच्छा शक्ति दिखाता है।
जबरदस्त इच्छा शक्ति। एक और लेखिका थी, ओलिव हिगिन्स प्राउटी। उन्होंने काफी मदद की, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी। धीरे धीरे वो ठीक हुईं, स्मिथ कॉलेज वापस गईं और 1955 में सिर्फ पास ही नहीं हुई बल्कि सुम्मा कम लाउडे यानी सर्वोच्च सम्मान के साथ ग्रेजुएट किया।
और फिर कैम्ब्रिज के लिए फुल ब्राइट स्कॉलरशिप भी मिली।
हाँ, ये उनके फौलादी इरादों का सबूत था। इतने बड़े मेंटल ब्रेकडाउन के बाद ये वापसी करना कोई मामूली बात नहीं थी।
फिर कैम्ब्रिज, और कैम्ब्रिज में मुलाकात हुई टेड ह्यूज से, दो बहुत प्रतिभाशाली और शायद तूफानी किस्म के कवि।
हाँ, 1956 में ये मुलाकात भी एकदम ड्रामेटिक थी। दोनों के बीच जबरदस्त खिंचाव था, एक साझा कलात्मक इंटेंसिटी थी। शायद दोनों ने एक दूसरे में अपनी परछाई देखी। सिर्फ 4 महीने में शादी कर ली।
और शुरुआती शादीशुदा जिंदगी कैसी थी? सुना एक तरह की लिटरेरी पार्टनरशिप भी थी।
हाँ, बिल्कुल थी। वे एक दूसरे के काम को पढ़ते थे, क्रिटिसाइज करते थे, शायद सबसे कठोर आलोचक थे एक दूसरे के, एक दूसरे को बेहतर लिखने के लिए पुश करते थे।
इसी दौरान उनका पहला कविता संग्रह आया, द क्लोसेस एंड अदर पोएम्स, 1960 में।
हाँ, टेक्निकली बहुत सदी हुई कविताएं थी, लेकिन उनमें वो कच्चापन, वो बेलगाम ऊर्जा नहीं थी जो बाद के काम में दिखती है। ऐसा लगता था जैसे आवाज थोड़ी कंट्रोल्ड है, दबी हुई है।
कुछ लोग मानते हैं कि उस पर ह्यूज का असर था।
हाँ, ये कहा जाता है कि उस दौर की उनकी कविताओं में जो कसाव था, जो नियंत्रण था, वो शायद ह्यूज की शैली से थोड़ा प्रभावित था। उनकी अपनी बिल्कुल निजी और विस्फोटक आवाज तो बाद में सामने आई।
1960 में बेटी फ्रीडा का जन्म हुआ।
हाँ, जिसने उनकी रचनात्मकता को एक नई दिशा तो दी, लेकिन माँ बनने की जिम्मेदारियों ने घरेलू दबाव भी बढ़ा दिया।
फिर 1961 में वो लोग डेवन शिफ्ट हो गए, कोट ग्रीन नाम की जगह पर, और वहीं उन्होंने द बेल जार पूरा किया।
हाँ, और इसी दौर में उनकी कविताएं भी बदलने लगी। वो अब ज्यादा पर्सनल हो रही थीं, ज्यादा कह सकते हैं खतरनाक जमीन पर जा रही थीं। वो अपने अंदरूनी अनुभवों, अपने डरों, अपने गुस्से को ज्यादा खुलकर लिख रही थीं।
1962 में बेटा निकोलस हुआ। बाहर से शायद सब ठीक लग रहा हो।
हाँ, बाहर से, पर अंदर शादी में तनाव बढ़ रहा था। और फिर वो बात सामने आई जिसने सब कुछ बिखेर दिया, टेड ह्यूज का अफेयर
आसिया विविल के साथ 1962 में।
हाँ, ये प्लाथ के लिए एक जबरदस्त झटका था। उनका घर टूट गया, उनका भरोसा टूट गया। लेकिन, और ये वैगनर मार्टिन की किताब का एक सेंट्रल पॉइंट है, ये जो व्यक्तिगत तबाही थी, इसने अजीब तरह से उन्हें आर्टिस्टिकली आजाद कर दिया।
ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में कि इतना बड़ा दुख।
हाँ, है तो विरोधाभासी, पर ऐसा हुआ। वो अलगाव, वो दर्द, उसने जैसे कोई बांध तोड़ दिया। 1962 की पतझड़ में सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर उनमें क्रिएटिव एनर्जी का जैसे विस्फोट हुआ।
ये वही दौर है जब उन्होंने एरियल की कविताएं लिखी।
हाँ, उनकी सबसे मशहूर, सबसे शक्तिशाली कविताएं, डैडी, लेडी लैजरस और भी बहुत सारी, ये सब उसी छोटे से अरसे में लिखी गईं। उन्हें अपनी वो आवाज मिल गई, कच्ची, बेबाक, पौराणिक, गुस्से से भरी, कभी कभी डरा देने वाली। ऐसा लगा जैसे बरसों से जो कुछ अंदर दबा था वो लावा बन के फूट पड़ा हो।
तो एक तरफ ये साहित्यिक ऊंचाई और दूसरी तरफ निजी जिंदगी का अंधेरा।
बिल्कुल। 1962-63 की वो सर्दियां बहुत मुश्किल थीं। वो लंदन में थीं, दो छोटे बच्चों के साथ अकेली। कवि WB येट्स के पुराने फ्लैट में रहती थीं। कड़ाके की ठंड थी, अकेलापन था, बीमारी थी और डिप्रेशन ने उन्हें फिर से बुरी तरह झकड़ लिया था।
साहित्यिक जीत उन्हें संभाल नहीं पाई।
नहीं, आखिरकार 11 फरवरी 1963 को बच्चों को सुरक्षित सुलाने के बाद सिल्विया प्लाथ ने आत्महत्या कर ली। वो सिर्फ 30 साल की थी।
अगर हम उनकी पूरी जिंदगी और उनके काम को देखें तो उनकी सोच के कुछ खास पहलू, कुछ कोर आइडियाज क्या नजर आते हैं?
एक चीज जो बहुत साफ दिखती है वो है परफेक्शनिज्म, मतलब हर चीज को बिल्कुल सही करने की जिद, और दूसरी तरफ जिंदगी की गहरी नाउमीदी, एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर जिसे कहते हैं, उसके बीच का जबरदस्त तनाव। वो अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी मेहनत से सब कुछ कंट्रोल करना चाहती थी, अपनी दुनिया बनाना चाहती थी, लेकिन साथ ही शायद पिता की मौत के बाद से ही उन्हें जिंदगी एक तरह से नुकसान और निराशा की एक चेन जैसी दिखती थी।
और वो दोहरी पहचान वाला मामला भी था, है ना, जिसे डॉपलगैंगर कहते हैं।
हाँ, वो उनके यहाँ बहुत स्ट्रांग था। एक थी वो पब्लिक सिल्विया, जो परफेक्ट स्टूडेंट, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट माँ बनने की कोशिश कर रही थी, और एक थी प्राइवेट सिल्वी, जो ज्यादा डार्क थी, ज्यादा गुस्से वाली, ज्यादा ईमानदार आर्टिस्ट थी, जो समाज के बनाए खांचों में फिट नहीं होना चाहती थी। ये बंटवारा उनके नॉवल द बेल जार में बहुत साफ दिखता है।
और उस दौर की एक औरत होने के नाते वो पारंपरिक उम्मीदें और अपनी जबरदस्त कलात्मक महत्वाकांक्षा, इनके बीच भी फंसी हुई थी।
हाँ, बहुत ज्यादा। वो एक अच्छी पत्नी और माँ बनना चाहती थी, ये इच्छा थी उनमें, लेकिन साथ ही वो चाहती थी कि उन्हें एक सीरियस राइटर के तौर पर पहचाना जाए, उनकी आवाज सुनी जाए। और 1950-60 के दशक में समाज अक्सर चाहता था कि औरतें घर को प्राथमिकता दें। हाँ, वो दोनों चाहती थीं, और इस चक्कर में वो एक ऐसे स्टैंडर्ड का पीछा कर रही थीं जो शायद नामुमकिन था। और फिर गिल्ट, अपराध बोध की वो शायद कहीं ना कहीं फेल हो रही हैं।
उन्हें ड्राइव क्या करता था, क्या चीजें थी जो उन्हें आगे बढ़ाती थी?
एक तो लिटरेरी इमोर्टैलिटी की प्यास, मतलब साहित्यिक अमरता। वो चाहती थीं कि उनका नाम हमेशा याद रखा जाए। शायद पिता की कमी और माँ की उम्मीदों ने इस इच्छा को और बढ़ाया।
और आर्थिक आजादी की चाह भी?
हाँ, वो भी बहुत थी, ताकि वो बिना किसी समझौते के लिख सकें, अपनी शर्तों पर जी सकें।
और अपने दर्द को कला में बदलने की उज्जिद, वो भी एक बड़ी प्रेरणा थी।
बिल्कुल, ये शायद सबसे बड़ी प्रेरणा थी। उन्हें लगता था, या शायद उन्होंने ये सीख लिया था, कि वो अपने दर्द को, अपने डर को, अपनी तकलीफों को क्रिएटिव फ्यूल बना सकती हैं। ये उनके लिए एक तरीका था अपने अनुभवों को समझने का, उन्हें कंट्रोल करने का।
और शायद वो परफेक्ट जिंदगी पाने की इच्छा भी, माँ के लिए, पिता की याद के लिए।
हाँ, ये तीसरा एंगल था। वो अपने पिता की याद का सम्मान करना चाहती थीं, माँ को दिखाना चाहती थीं कि उनका त्याग बेकार नहीं गया, और इसके लिए ज़रूरी था कि वो हर चीज़ में सफल हों। तो जब भी कोई मुश्किल आती थी, उनकी पहली प्रतिक्रिया होती थी, और मेहनत करो, और बेहतर बनो।
लेकिन यही परफेक्शनिज्म।
हाँ, यही परफेक्शनिज्म उनके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि इसने उन्हें अपनी लिमिट्स मानने से रोका। दर्द को कला में बदलना उन्होंने सीखा जरूर, पर यह प्रोसेस बहुत वॉलेटाइल था, अस्थिर था, और आखिर में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, यानी आत्मघाती बन गया। वो कंट्रोल चाहती थीं, पर जिंदगी और उनके खुद के इमोशंस अक्सर उनके कंट्रोल से बाहर हो जाते थे।
उनकी जिंदगी में बहुत से अहम पल आए होंगे, लेकिन अगर तीन सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स चुनने हों जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, तो वो कौन से होंगे? पहला तो शायद पिता की मौत ही।
हाँ, 1940 में जब वो सिर्फ 8 साल की थीं, जैसा हमने पहले भी कहा, वैगनर मार्टिन मानती हैं कि ये उनके साइकी की, उनके मानस की सेंट्रल कॉम्प्लेक्सिटी थी। इसने उनमें वो अबैंडनमेंट, यानी अकेले छोड़ दिए जाने का गहरा डर पैदा किया, और एक आइडियल पुरुष की तलाश का पैटर्न शुरू किया।
और इसका असर उनके रिश्तों पर पड़ा?
हाँ, उनके बाद के रिश्तों पर, खासकर टेड ह्यूज के साथ उनके कॉम्प्लेक्स रिश्ते पर और उनकी सेल्फ वर्थ की भावना पर इसका लगातार असर रहा। डैडी जैसी कविताएं इसी गहरे घाव की उपज है।
दूसरा मोड, 1953 का वो ब्रेकडाउन और सुसाइड अटेम्प्ट।
बिल्कुल, न्यूयॉर्क से मोह भंग के बाद वो गंभीर डिप्रेशन, वो नाकाम ईसीटी और जान देने की कोशिश। ये इसलिए टर्निंग पॉइंट था क्योंकि इसने उनके उस बाहरी परफेक्ट सेल्फ को तोड़ दिया। हाँ, सीधे सीधे इसने द बेल जार के लिए मटीरियल दिया, और उस जमाने के मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट की जो मुश्किलें थीं, जो ट्रॉमा था, उसे भी सामने लाया। बच जाना उनकी हिम्मत का सबूत था, पर इसने एक स्थायी डर, एक वल्नरेबिलिटी छोड़ दी। उन्हें ये एहसास हो गया कि उनका दिमाग, जिसे वो अपना सबसे बड़ा एसेट मानती थीं, वो भी उन्हें धोखा दे सकता है।
और तीसरा और शायद सबसे ज्यादा नाटकीय मोड, 1962 में ह्यूज से अलगाव, और उसके फौरन बाद एरियल कविताओं का वो विस्फोट।
हाँ, ये बहुत ही पैराडॉक्सिकल है, विरोधाभासी। ह्यूज के अफेयर और अलगाव ने उन्हें पर्सनली तो तबाह कर दिया, लेकिन आर्टिस्टिकली यही उनकी सबसे बड़ी लिबरेशन, सबसे बड़ी मुक्ति बन गई।
मुक्ति कैसे?
वैगनर मार्टिन का तर्क है कि इस अलगाव ने उन्हें सामाजिक अपेक्षाओं के बंधनों से, और शायद ह्यूज के साहित्यिक प्रभाव के बंधनों से भी आजाद कर दिया। वो बेड़ियां टूट गईं, और फिर कुछ ही हफ्तों में उन्होंने वो कविताएं लिखीं जिनमें उनकी अपनी उनीक, बेबाक, शक्तिशाली और उग्र आवाज थी।
ये वो कविताएं हैं जो सिर्फ निजी दुख का बयान नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वे निजी दुख से शुरू होकर औरत के गुस्से, बदले की भावना और पुनर्जन्म की यूनिवर्सल मिथिकल कहानियों तक पहुंच जाती हैं। ये वो मोमेंट था जब सिल्विया प्लाथ एक टैलेंटेड पोएट से ग्रेट, एक असेंशियल पोएट बन गई। उनका ट्रांसफॉर्मेशन था ये।
सिल्विया प्लाथ की कहानी ये सिर्फ एक लेखिका की कहानी नहीं है, यह हमें इंसानी जिंदगी के बारे में, उसकी मुश्किलों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। क्या सबक है इसमें हमारे लिए?
सबसे पहला सबक तो शायद परफेक्शनिज्म के खतरों के बारे में है। हर चीज परफेक्ट करने की चाहत, प्लाथ की जिंदगी दिखाती है कि ये चाहत कितनी नुकसानदेह हो सकती है, खासकर जब हम अपनी इंसानी कमजोरियों को, अपनी सीमाओं को मानने से इनकार कर देते हैं।
और आज के जमाने में तो ये और भी ज्यादा रेलेवेंट है, सोशल मीडिया वगैरह को देखते हुए।
हाँ बिल्कुल, जहाँ हर कोई एक परफेक्ट इमेज बनाने के प्रेशर में है। दूसरा सबक है अपनी सच्ची आवाज, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करने का महत्व।
उनकी सबसे पावरफुल आर्ट तभी निकली जब उन्होंने दूसरों को खुश करने की कोशिश छोड़ी।
सही।
जब उन्होंने अपने असली, चाहे वो कितने भी डार्क या अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, अनुभवों को ईमानदारी से आवाज दी। ये याद दिलाता है कि सच्ची क्रिएटिविटी अक्सर वल्नरेबिलिटी यानी कमजोरी को स्वीकार करने से आती है।
और दर्द और कला का वो रिश्ता, वो भी बहुत जटिल है।
हाँ,
कैसे दर्द क्रिएटिविटी को जगा सकता है, उसे फ्यूल दे सकता है, लेकिन उसकी कीमत भी बहुत भारी हो सकती है। प्लाथ ने अपने दर्द को महान कला में बदला, पर ये आग उन्हें ही भस्म कर गई। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है।
और शायद सपोर्ट सिस्टम की अहमियत भी, भावनात्मक सहारा, प्रैक्टिकल मदद, खासकर क्रिएटिव लोगों के लिए जो मेंटल स्ट्रगल से गुजरते हैं।
हाँ, उनके आखिरी महीनों का अकेलापन दिखाता है कि आइसोलेशन कितना खतरनाक हो सकता है। अगर उन्हें सही समय पर सही तरह का सपोर्ट मिला होता तो शायद कौन जाने कहानी कुछ और होती।
और वो चुनौती भी पर्सनल रोल्स, जैसे माँ बनना, पत्नी होना और प्रोफेशनल एम्बिशन, इनको एक साथ साधना, खासकर उस जमाने की औरतों के लिए।
हाँ, वो भी बहुत साफ दिखता है। प्लाथ दोनों दुनियाओं में बेस्ट चाहती थी, एक खुशहाल घर भी, एक कामयाब करियर भी। उनकी कहानी दिखाती है कि उस समय ये संतुलन बनाना कितना मुश्किल, लगभग नामुमकिन सा था।
तो इस पूरी बातचीत के बाद अगर हम सिल्विया प्लाथ के जीवन और इस जीवनी से तीन खास बातें निकालें, तो पहली, एक भावनात्मक सीख क्या होगी?
भावनात्मक स्तर पर प्लाथ की कहानी हमें ये सिखाती है कि परफेक्ट होने का, परफेक्ट दिखने का दबाव कितना तोड़ सकता है, खासकर जब बाहरी उम्मीदें और अंदरूनी संघर्ष टकराते हैं। यह हमें अपनी और दूसरों की कमजोरियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होने की याद दिलाती है। सच्ची आवाज अक्सर दरारों से ही बाहर आती है।
सही कहा। दूसरी, एक बौद्धिक समझ या इनसाइट।
बौद्धिक तौर पर प्लाथ का काम ये दिखाता है कि कैसे गहरे व्यक्तिगत दर्द और ट्रॉमा को भी पावरफुल यूनिवर्सल आर्ट में बदला जा सकता है। उन्होंने सिर्फ अपने दुख को एक्सप्रेस नहीं किया, उन्होंने लैंग्वेज और क्राफ्ट के जरिए उसे कंट्रोल किया, उसे शेप दिया और उसे एक ऐसी लिटरेरी लेगेसी में बदल दिया जो आज भी रेजोनेट करती है। मतलब कला कैसे पर्सनल को यूनिवर्सल बना सकती है, इसका वो एक जबरदस्त उदाहरण है।
और तीसरी, एक सार्वभौमिक सच्चाई, सबके लिए लागू होने वाली बात।
सार्वभौमिक स्तर पर प्लाथ की कहानी ये बताती है कि बहुत मुश्किल हालात में भी कमाल की क्रिएटिविटी संभव है, लेकिन इसके लिए मेंटल हेल्थ और सपोर्ट सिस्टम की अहमियत सबसे ज्यादा है। टैलेंट और मेंटल स्ट्रगल के बीच का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि टैलेंट को नर्चर करने की, उसे सहारा देने की जरूरत होती है, खासकर जब वो मुश्किल दौर से गुजर रहा हो।
तो एक सवाल मन में रह जाता है कि अगर प्लाथ को आज के जमाने का सपोर्ट, मेंटल हेल्थ को लेकर जो आज जागरूकता है, वो मिली होती, तो क्या उनकी कहानी अलग होती? और क्या उनकी कला, क्या वो उतनी ही इंटेंस, उतनी ही पावरफुल होती? ये सोचने वाली बात है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।